पेज 324, 324। भगवान का घर एवं नवीन सृष्टि, द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। यहाँ नवीन सृष्टि से श्री अरविंद उस सृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं जो धरती पर प्रकट होगी। धरती पर जो सुपरामेंटल क्रिएशन होगा वो धरती की कंडीशंस को मॉडिफाई करके होगा। नेचुरली वो एक बहुत चैलेंजिंग कार्य है जो कालांतर में संपन्न होगा। यहाँ उसी सृष्टि की, सुपरामेंटल सृष्टि की बात कर रहे हैं जो सुपरामेंटल जगत में वहाँ की सत्ताओं, वहाँ की ऊर्जाओं के बीच में पाई जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अतिमानसिक लोक में जो नवीन सृष्टि पाई जाती है उसका वर्णन है। भगवान के घर में दो प्रकार से प्रवेश मिलता है। एक, या तो कोई अशुपति की तरह वीर तपस्वी हो, महायोगी हो, जो अपने हृदय से प्रत्येक कामना वासना को निर्मूल करके उस रक्त को माँ के चरणों में समर्पित कर सके, ऑफर कर सके, जिसने अपने अहंकार के एक एक कोने से निकाल करके उसका विनाश कर दिया हो, या फिर जिसका हृदय श्रद्धा समर्पण भक्ति से भरा है, जिसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है। ये दो कंडीशंस हैं भगवान के घर में प्रवेश करने की। यदि इसके अन्यत्र भूले भटके कोई भगवान के घर में प्रवेश कर जाता है तो उस तीव्रता को, उस तीक्ष्णता को, उस ऊष्मा को, उस आनंद को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बहुत तीव्र कोई भी चीज़ होती है, आनंद भी, प्रेम भी, तो वो अहंकार सहन नहीं कर पाता है। लेकिन अगर भक्ति है, श्रद्धा है, समर्पण है, त्याग है, तो फिर वह चीज़ अपने आप हम तैयार होते जाते हैं और भगवान के घर की ओर, भगवान के घर के अनुरूप हम ढलने शुरू हो जाते हैं। तो ये फीस है, एंट्री फीस है। और अशुपति से, जैसे किसी भी जगह एंट्री के लिए एंट्री फीस होती है, तो अशुपति ने अपने हृदय से कामना वासना अहंकार इसको निर्मूल करके प्रवेश द्वार का अधिकार पा लिया है। तो या तो अधिकार या फिर कृपा। कृपा कब? जब हम कृपा के अनुरूप हों। श्री अरविंद कहते हैं फेथ, सिंसेरिटी, सरेंडर, डिवोशन, ओपनिंग, ये भी हमको अनुरूप कर देती हैं। कृपा हमको अंदर ले सकती है। ग्रेस का मतलब ही यही होता है कि जो हम अपने एफर्ट से नहीं कर सकते हैं, वहाँ ग्रेस आती है और हमारे छोटे से एफर्ट में, अपना 1% एफर्ट में 99% अपना ऐड कर देती है। और तब हम देखते हैं कि वो 1% एफर्ट भी ग्रेस ही करवा रही थी, और फिर वो हमको भगवान के घर में ले आती है। तो कैसा है भगवान का घर, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ छत नहीं है, दीवार नहीं है, क्योंकि छत और दीवार की ज़रूरत नहीं है, सीमाएं नहीं है। वहाँ भेदभाव नहीं है, किसी को किसी से छिपने की ज़रूरत नहीं है। पाप बोध नहीं है, इसलिए कुछ छिपाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ सत्य ही सत्य का आवरण है और ज्ञान ही अपने प्रकाश को कमोबेश करके प्रकाश का आवरण बन जाता है। बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा था, इट नीडेड नॉट द शीथ ऑफ इग्नोरेंस। यहाँ पर इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर एक अलग नियम कानून है। जेल के नियम कानून अलग होते हैं और स्वतंत्र व्यक्ति के ऊपर अलग कानून लागू होते हैं। जेल में आप वह कई मौलिक अधिकार छिन जाते हैं। तो जब हम अज्ञान की जेल में होते हैं तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं जो छिन जाते हैं, जैसे आनंद। ये मौलिक अधिकार है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो छीन जाता है, क्योंकि जब हम अज्ञान की जेल में जाते हैं तो वो हमसे निकाल दिया जाता है, अब तुम्हारा ये मौलिक अधिकार नहीं है। शांति, ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन वो हमसे निकाल ली जाती है, उसकी जगह हमको सब्स्टिट्यूट दे दिया जाता है। सुख दुख, पीड़ा खुशी, हर्ष विषाद, ये हमको दे दिए जाते हैं एक्सचेंज में। तो ये इस घर में इसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान के घर में, वहाँ सर्वत्र जितने भी प्राणी हैं वो केवल प्रेम की ऊर्जा को श्वास लेते हैं और आनंद के भोजन से पोषित होते हैं। देयर वननेस वॉज नॉट टाइड टू मोनोटोन, इट शोड ए 1000 एस्पेक्ट्स ऑफ इटसेल्फ, इट्स काम इम्यूटेबल स्टेबिलिटी, अ बोर ऑन ए चेंजलेस ग्राउंड, फॉर एवर सेफ, कंपेल्ड टू ए स्पॉन्टेनियस सर्विट्यूड, द एवर चेंजिंग इनकैलकुलेबल स्टेप्स। वननेस वॉज नॉट टाइड टू मोनोटोन। ये टिपिकल डिफरेंस हम देखते हैं शेरविंद आश्रम में, जो भगवान का घर, वास्तव में भगवान ने इसको भगवान के घर के अनुरूप बनाया है। और अगर हम किसी संन्यास आश्रम में चले जाएं, मालूम नहीं, आप जरूर किसी किसी का परिचय हुआ होगा, मैंने देखे हैं संन्यास आश्रम, सब लोग एक रंगा कपड़ा पहनेंगे, ज़्यादातर एक तरह की चीज़ें करेंगे, व्यवस्था के लिए जितना ज़रूरत है, भोजन या शायद एक लाइब्रेरी और ध्यान कक्ष, ये तो रहेगा, लेकिन वहाँ नृत्य भी हो सकता है, गायन भी हो सकता है, पेंटिंग भी हो सकती है, अनेकों अनेकों प्रकार की चीज़ें, अनेकों अनेकों प्रकार की विधाएं वहाँ प्रकट हो सकती हैं, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन मानी जाती है, एक रस। लेकिन भगवान का एकत्व कैसा है? वननेस वॉज नॉट टाइड टू मोनोटोन। एकत्व एक रसता नहीं है, एकत्व में अनेकों रस एक साथ निकलते हैं। और ये चीज हम यहां देखते हैं कि माँ के डिवोटीज, एक बार नलिदा ने बड़ा सुंदर रिमार्क दिया कि किसी ने पूछा होगा कि आप में चंपकलाल जी में क्या अंतर या कैसे, तो नलिदा ने कहा, बट वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन चंपकलाल एंड माई सेल्फ। एक हैं, लेकिन बाहर से जिन्होंने देखा है कितने भिन्न। और माँ के जितने भी, अगर हम उस समय के बड़े बड़े डिसाइपल्स लें, जिनको निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो साधारण श्रेणी के मनुष्य नहीं थे, चाहे आप एक ओर पवित्रदा को ले लें, दूसरी ओर प्रणबदा को ले लें, नलिदा को ले लें, अमृतदा को ले लें, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, लेकिन बिल्कुल भिन्न प्रकृति। और कौन कह सकता है कि कौन माँ के ज़्यादा करीब था? अपने 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 रुझान के अनुसार कोई कहता था ये ज़्यादा या वो ज़्यादा। या हम अमल किरण को ले लें, निरोध बरन को ले लें, दोनों बुजम मित्र। अमल किरण का इतना प्रचंड मेधा शक्ति कि एक बार किसी ने कहा कि आपने अपना मन कभी शांत, साइलेंट माइंड का अनुभव किया है? कहा, मैंने नहीं किया, लेकिन मैंने लिख लिख कर दूसरों का माइंड शांत करा दिया। किसी ने उनसे कहा, ये डे वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर, कि श्री अरविंद ने 35 वॉल्यूम लिखे, निश्चित रूप से वे महान योगी थे। तो अमल किरण कहते हैं, इस दृष्टि से तो मैं और भी महान हो गया, मैंने तो 60 किताबें लिखी हैं। यानी यह भी कोई महानता का लक्षण है, लेकिन यह असली चीज नहीं है। असली चीज तो एक योगी एक शब्द ना कहे तो महान है। तो ये उनका एक और ये, और दूसरी ओर नीरज बरन श्री अरविंद से प्रश्न करते जाते हैं और श्री अरविंद बार बार उत्तर दे रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा। अंत में कहते हैं श्री अरविंद, मैं न जाने बरसों से तुम्हारी बुद्धि के अंदर थोड़ा सा प्रकाश डालने की चेष्टा कर रहा हूं, लेकिन तुम हो कि आने ही नहीं देते। और दोनों, कौन कहेगा कि कौन ज्यादा बड़े थे? अपने अपने ढंग से दोनों महान हैं, बिल्कुल भिन्न प्रकृति, भिन्न। यानी अमल किरण के तो जोक्स इतने मशहूर हैं कि किसी, कोई लड़का शेविंग कर रहा है तो कहते हैं, अरे तुमने परफ्यूम नहीं लगाया अपने ऊपर, खाली शेविंग कर रहे हो, इस तरह से उनकी एक सोच। दूसरी ओर ऐसे जो एकदम सन्यासी जैसे रहने वाले, तो अलग अलग यहाँ पर इतने अद्भुत एक से एक नमूने, और हर व्यक्ति अपने अपने ढंग में ग्रेट। आप नहीं कह सकते कि इसको इसको कंपेयर कर सकते हो, यहां तक कि आपस में भी कभी कभी उनके कलह, लेकिन सब एक सूत्र में जुड़े हुए थे। और वो सूत्र क्या था? माँ और माँ का प्रेम। और माँ हर किसी के अंदर जो संभावना थी उसको प्रकट कर देती थी, उच्चतम संभावना को। तो यहां एक एक पंक्ति में, देयर वननेस वॉज नॉट टाइड टू मोनोटोन। ये तो एक एक संन्यास आश्रम में होता है। इट शोड ए 1000 एस्पेक्ट्स ऑफ इटसेल्फ। भगवान के अनंत गुण हैं, तो हर किसी में एक या दो या तीन गुण प्रकट होंगे। जो एक में प्रकट होगा कोई आवश्यक नहीं कि दूसरे में प्रकट हो, जो दूसरे में होगा कोई आवश्यक नहीं कि तीसरे में प्रकट हो। और यही तो भगवान की विविधता है और अनंतता है। अगर सब एक जैसे होंगे तो भगवान बोर हो जाएंगे, भगवान को ये नहीं पसंद है। प्रकृति का खेल इस तरह से नहीं होता है, एक दो पत्ते एक जैसे नहीं होते। और यही उनका अनंत रूपी आनंद है। इट्स काम इम्यूटेबल स्टेबिलिटी अ बोर ऑन ए चेंजलेस ग्राउंड फॉर एवर सेफ कंपेल्ड टू ए स्पॉन्टेनियस सर्विट्यूड। कितनी सुंदर बात है। वहां सब किस चीज में कार्य में जुटे हुए थे, सेवा में। लेकिन क्यों सेवा कर रहे थे, किसी को यह कहना नहीं पड़ रहा था 6 घंटे तुमको सेवा देनी है, सेवा दोगे तो हर महीने तुमको ये मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं था। स्पॉन्टेनियस सर्विट्यूड, उनको आनंद आता था सेवा में, जहां जो ये नहीं कि मेरा तो ये काम है, इसके आगे मेरा काम नहीं है। ये है भगवान का घर। और हम लोगों का घर सेवा में भी विभाजन है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, ये करने से ये मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। वहां स्पॉन्टेनियस सर्विट्यूड, क्यों, हर एक किसी की सेवा में हम वास्तव में भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, उसी का आनंद है। द एवर चेंजिंग इनकैलकुलेबल स्टेप्स, द सीमिंग रेकलेस डांसर्स सटल प्लान ऑफ इमेंस वर्ल्ड फोर्सेज इन दैट परफेक्ट प्ले। ये बहुत अद्भुत लाइन है। हम लोग नृत्य करते हैं तो छंदबद्ध करते हैं, तालबद्ध करते हैं, लयबद्ध करते हैं। क्या भगवान के नृत्य को हम किसी ताल छंद लय में बांध सकते हैं? लोग हैं जो प्रयास करते हैं। सावित्री आयंबिक पेंटामीटर है। अरे किस छंद में तुम बांधोगे सावित्री को? अनंत की रचना है। हम अपनी सीमित बुद्धि से प्रयास कर सकते हैं। भगवान के गान को हम किस लय में बांधेंगे? किसी लय में नहीं बांध सकते। और जब हम लय में बांधने की चेष्टा करते हैं एक सीमित लय में, तब हम उसका रिलीजन बना देते हैं। बड़ी सुंदर स्टोरी है कि श्री कृष्ण अपना नृत्य करके बांसुरी बजा के चले गए। अब गोपियों ने देखा तो कुछ लोग, ऐसा समय आया जब एकाध कोई गोपी जिंदा थी, गोप गोपी, और लोग पूछते हैं उनसे जाके, अरे कहीं टेप रिकॉर्डर मिलेगा कृष्ण जी के बांसुरी का, नृत्य का? ना, वो तो अवेलेबल नहीं है। कैसा था, कैसा था, हम तो वर्णन नहीं कर सकते। अरे वो कौन सा राग था, अहिर बिलावल था या सुबह का राग था या ललित प्रभा था, कौन सा राग था, भैरवी था क्या, पता नहीं कौन सा राग था। माताजी के म्यूजिक में लोग पूछते हैं ईस्टर्न है वेस्टर्न है, ईस्टर्न वाले कहते हैं ईस्टर्न राग है, वेस्ट वाले कहते हैं वेस्टर्न राग है। माताजी से किसी ने पूछा, माँ ने कहा ये ना ईस्टर्न है ना वेस्टर्न है, दोनों के परे है। तो गोपी गोप तो यही कहते, पर बुद्धिमान मनुष्य तो करना है, पूरा रिसर्च करेगा, अंत में कहेगा देखो कृष्ण जी की जो बांसुरी है उसका ट्यून जो था वो वास्तव में सुबह सुबह भोर का राग था उसमें, इसीलिए गोपियां रात को उठ के जाग जाती थी और भाग आती थी। फिर वो करेगा उसको कॉपी करेगा, हरिप्रसाद चौरसिया जी को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आप इस राग को अपनी बांसुरी से निकालिए, तो निकाल देंगे, टेप होगा और कहेंगे ये बेसिकली लगभग कृष्ण की ही बांसुरी है, केवल कृष्ण नहीं बजा रहे पर एसेंस वही है। और जब हम ऐसा करते हैं तो उस माधुरी को, उस अनंतता को भंग कर देते हैं, और वहीं से धर्म और धर्म की सीमाएं जन्म लेती हैं। परंतु भगवान देखिए कितने सुंदर है, इनकैलकुलेबल स्टेप्स, रिस्की माने वर्ड्स देखिए शेरविंद क्या कहते हैं, रेकलेस डांस, रेकलेस यानी नृत्य कर रहे हैं तो उनको कोई चिंता नहीं है, एक चरण धरा कई विश्व नष्ट हो गए, दूसरे चरण में कई सूर्य उदय हो गए, रेकलेस। क्या इसको हम किस लॉजिक में, और यही तो अनंतता है, इसी का आनंद है। दिस इज कॉल्ड रेकलेस डांस, जैसा कि वो मंदाकिनी जल में वो डांस था, किसका डांस था, शिव का नृत्य था। अब उसमें कौन गया, टूरिस्ट पिलग्रिम घोड़े हाथी, कौन बचा, कौन गणना कर सकता है। लेकिन हर चीज के पीछे एक विजडम है जिसको हम नहीं समझ पा रहे, इसीलिए शेरविंद यहां पर लिखते हैं, द सीमिंग, ऐसा प्रतीत होता है, यह सत्य नहीं है, प्रतीत होता है मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य सीमाओं में सुरक्षित महसूस करता है। द सीमिंग रेकलेस डांसर सटल प्लान, डांसेस सटल प्लान ऑफ इमेंस वर्ल्ड फोर्सेज इन देयर परफेक्ट प्ले अपीयरेंस लुक्ड बैक टू इट्स हिडन ट्रूथ एंड मेड ऑफ डिफरेंस वननेस स्माइलिंग प्ले हिडन ट्रूथ। अब देखिए रेकलेस डांस को कैसे कैसे दिखाया गया है। जब राम, श्री राम बाली का वध करते हैं तो बाली उनसे लॉजिक पूछता है, आप धर्म की स्थापना करने आए मुझे क्यों मारा, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था। और ये तो गलत है कि आप पीछे पेड़ के पीछे छिपकर मुझे मार रहे हैं अपने फ्रेंड को बचाने के लिए, उसका ये लॉजिक है। और लेकिन ये अपीयरेंस का लॉजिक है, उसके अंदर का सत्य श्री राम जानते हैं। तो वहां पर बड़ी सुंदर ढंग से वो बताते हैं कि धर्म वास्तव में क्या है। हम लोग बाहर से चीजों को देखते हैं अपीयरेंस, लेकिन भगवान सत्य के अनुरूप कार्य करते हैं, तो वो बाहर से दृष्टि से लगता है रेकलेस, अरे उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, वो इतना अच्छा आदमी, उसकी हड्डी क्यों टूटी, हड्डी तो उसकी टूटनी चाहिए थी, जो महापापी पाखंडी बदमाश, वो देखो 100 साल का हो गया, कोई चोट नहीं पहुंचा, और वो बेचारे इतने अच्छे थे 50 में चले गए। तो ये हमारा बाहरी दृष्टि है, लेकिन भगवान की दृष्टि कुछ और है। तो यहां पर अपीयरेंस गेव बैक, अपीयरेंस लुक्ड बैक टू इट्स हिडन ट्रूथ एंड मेड ऑफ डिफरेंस वननेस स्माइलिंग प्ले, इट मेड ऑल पर्सन्स फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिक, येट ऑल वेयर बींग्स सीक्रेट इंटीजर्स। हम सब क्या है, फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिक। अब देखिए फ्रैक्शन बड़ी सुंदर, क्या शेरविन मैथमेटिक्स है, ये लवली मैथमेटिक्स है। फ्रैक्शन में एक ऊपर फिगर होती है, एक नीचे होती है, और बीच में एक लाइन होती है। ऊपर क्या है, वन है। अब नीचे कोई 1/2 है, कोई 1/3 है, कोई 1/4 है, कोई 1/5 है, है तो वन वन का ही फ्रैक्शन, और हर किसी का अपना एक योगदान है। जब पुल बन रहा है, राम जी जा रहे हैं वहां पर लंका, तो नल नील तो हीरो हैं उस समय, हनुमान जी भी बेचारे पीछे रह गए हैं, क्योंकि यही इंजीनियर हैं जो टेक्निक जानते हैं पत्थर को तैराने वाला, तो अपना तैरा रहे हैं। एक गिलहरी भी कर रही है, रेत में लोट करके जाके समुद्र में आ रही है, तो सब बंदर लोग हट रास्ते में आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं ना, हम लोग सेवक हैं, तुम कौन हो बीच में आने वाली। अब वो बेचारी को समझ नहीं आ रहा है क्या करे, तो राम जी देखते हैं उसको, बुलाते हैं अपने पास, कहते हैं मैं जानता हूं तुम क्या कर रही हो, हाँ प्रभु आपकी सेवा कर रही हूं, मैं तो नल नील जितना बोझा नहीं उठा सकती, ना वैसी विधा है, लेकिन थोड़ा भी मिट्टी अगर समुद्र में जाएगा तो मैं समझती हूँ कुछ तो काम हल्का होगा, तो मैं उतना ही कर रही हूँ। और भगवान उसको बहुत प्यार से उसके ऊपर कहते ना हाथ फेरते हैं, ये उसका योगदान है। माताजी से जब किसी ने कहा इसको आश्रम में क्यों रखा है, निकाल दो, तो माँ ने कहा क्यों, कुछ काम धाम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, क्या कहते हो स्टाम्प कितना अच्छा लगाता है, आश्रम में सब कुछ खाना पीना सब फैसिलिटी सब कुछ मिल रहा है, काम क्या है खाली स्टाम्प लगाना, कोई और लगा देता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये भगवान का घर है। ऑल आर फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिक। हम लोग केवल नीचे वाला भाग देखते हैं, कहते हैं वो 5 है वो बड़ा है, ये 4 है ये छोटा है, लेकिन भगवान की दृष्टि में सब मेरे ही फ्रैक्शन है, 1/1/1 यही है, और सब मिलकर उस संपूर्णता का बोध होते हैं। येट ऑल वेयर बींग्स सीक्रेट इंटीजर, किसी को भी आप हटा नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक स्थान है इस संपूर्णता में, गिलहरी को भी नहीं। ऑल स्ट्रगल वॉज टर्न्ड टू ए स्वीट स्ट्राइफ ऑफ लव। वहां जब लोगों को लड़ना होता था तो क्या करते थे, कभी कभी मन होता है थोड़ा लड़े माने कुछ कुश्ती हो, तो कहते चलो आज हम लोग एक फ्रेंडली मैच करेंगे, फ्रेंडली मैच होता है ना कि जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फ्रेंडली मैच करते थे, स्वीट स्ट्राइफ ऑफ लव, प्रेम होता था उसके अंदर। जैसे पुराने समय में पिंग पोंग खेलते थे तो सन्यासी खेलते थे लामा, तो कैसे खेलते थे, वो वास्तव में लामा के लिए खेल बना था प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं, आपके कंट्रोल के लिए। तो एक लामा इधर से मारता था तो दूसरा लामा उधर से मारने के बाद झुकता था जैसे प्रणाम की मुद्रा में, फिर तैयार होता था, फिर दूसरा मारेगा फिर वो झुकेगा तैयार होगा, यानी ये सारा बैलेंस परफेक्शन का खेल था। अब प्रतिस्पर्धा का खेल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा किसको मेडल मिलेगा, तो वहां पर स्वीट स्ट्राइफ ऑफ लव। लेकिन यहां पर लव टर्न्स इनटू अ हॉरिबल स्ट्राइफ ऑफ हेट, यही अंतर है। तो वहां पर ऑल स्ट्रगल वॉज टर्न टू ए स्वीट स्ट्राइफ ऑफ लव इन द हार्मोनाइज सर्किल ऑफ ए श्योर एम्ब्रेस। क्यों, किस चीज की गारंटी थी वहां? हम जीते या हारे हैं, मां का प्यार हमारे लिए बराबर है। उस स्टोरी है ना, निरोध बरन मैच खेलने गए तो निरोध बरन ने भगवान लॉर्ड के करीब थे तो श्री अरविंद को प्रे किया, मुझे मैच जिताना। अब श्री अरविंद को प्रे कर लिया डायरेक्ट, अभी और क्या चाहिए, खेला हार गए। फिर जाके पूछा ये कैसे हुआ, तो कहा तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा जो विपक्षी है अपोनेंट उसने माता जी को प्रे किया था। तो तुमने तो सुनी नहीं मेरी बात कि मां को प्रे करोगे तो 100% है, मुझे प्रे करोगे तो 25% है। तो मैंने तो दिया, अगर वो प्रे नहीं करता हार जाता, अब उसने माता जी को प्रे कर दिया तो उसका तो 100% हो गया। तो स्वीट टाइप ऑफ लव, ठीक है कोई बात नहीं, हारे जीते क्या हुआ, मां और श्री अरविंद का प्रेम है तो वो स्वीट टाइप ऑफ लव है। इन द हार्मोनाइज सर्किल ऑफ ए श्योर एम्ब्रेस, सबको मालूम है हम हारे या जीते माता जी इस आधार पर हमारा मूल्यांकन नहीं करेंगी, ये नहीं करेंगी कि ये देखो ये जीता है। पहले स्कूल में भी कैसे मूल्यांकन होता था कि एक बच्चे को माता जी ने जब प्री दे एक्सेलेंस दिया तो किसी ने कहा ये तो ना किसी चीज में इसने एक्सेलेंट किया ना कुछ और किया, इसको क्यों मिला प्राइज। माता जी ने कहा देखा नहीं तुमने, दो अद्भुत बातें, सब विषय में इसके लगभग समान नंबर आए हैं, ये भी एक बैलेंस है। यानी ये नहीं कि एक दो विषय में बहुत ऊपर है दूसरे में नीचे। तीसरा, 3 साल से कंसिस्टेंटली ये थोड़ा 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 इंप्रूव कर रहा है, शिक्षकों ने तो ये देखा ही नहीं था। तो ये माँ ये देख करके नहीं कि बाहर से क्या है, अंदर से, ये हार्मोनाइज सर्किल ऑफ ए श्योर एम्ब्रेस। आइडेंटिटीज रिकनसाइलिंग हैप्पीनेस गेव ए रिच सिक्योरिटी टू डिफरेंस। रिकनसाइलिंग हैप्पीनेस, रिकनसाइलिंग हैप्पीनेस क्या है, डिफरेंस काम में कोई बड़ा है, कोई डिपार्टमेंट का हेड है, किसी को सौंपा गया एक जिम्मा, वो डांट भी सकता है, कह भी सकता है कुछ, लेकिन रिकनसाइलिंग हैप्पीनेस कहाँ आती है, हमारे डिफरेंस को जो रिकनसाइल कर दे उस आइडेंटिटी में कि ठीक है उसने डांट दिया, वो हमसे बड़ा है या ज़्यादा अनुभव है या डिपार्टमेंट का हेड है, लेकिन माँ की संतान तो हम समान हैं। और माँ फिर से वही प्रेम करके, हाँ माँ नहीं भेदभाव करेंगी, ये तो एक अरेंजमेंट है काम का, ये रियल आइडेंटिटी नहीं है, काम का एक अरेंजमेंट है। तो यहां देखिए, रिच सिक्योरिटी टू डिफरेंस। ऑन ए मीटिंग लाइन ऑफ हैजार्डस एक्सट्रीम्स द गेम ऑफ गेम्स वॉज प्लेड टू इट्स ब्रेकिंग पॉइंट वेयर थ्रू सेल्फ फाइंडिंग बाई डिफाइंड सेल्फ लॉस देयर लीप्स आउट यूनिटीज सुप्रीम डिलाइट। और वहां क्या हो रहा था, कोई अगर उस नृत्य को देखता तो देखता अरे भगवान यहां थे, खो गए उसमें मिल गए, जिसके साथ नाच रहे थे उसमें एक हो गए। फिर जब उसको देख रहा जो नाच रहा है तो कहता अरे नहीं यहां तो इसके अंदर भगवान दिखाई दे रहे हैं, फिर देखता तो देखता नहीं भगवान और ये नाच रहे हैं। डिवाइन सेल्फ लॉस, भगवान खुद को खो देते हैं प्रेम में, अपने भक्तों के साथ एक हो जाते हैं। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं माता जी का तरीका तुम लोग समझते नहीं हो, इसलिए पूछते हो कि माँ को ये तकलीफ क्यों हुई, वो प्रॉब्लम क्यों हुआ। कहते हैं श्री अरविंद कहते हैं माँ अपने प्रेम के कारण सारे साधकों के साथ एक हो जाती हैं, और जब वे एक हो जाती हैं तो उनका अंधकार, उनकी समस्या, उनके अंदर जो विष है वो सब वो अपने ऊपर ले लेती हैं, ये उनका प्रेम। इसको क्या कहते हैं, डिवाइन सेल्फ लॉस, खुद को खो देती हैं, खुद को भूल जाती हैं, मैं डिवाइन हूँ भूल जाती हैं। एक बच्चे के साथ खेलती हैं, खेलते खेलते बच्चा कहता है अब एक खेल और खेलो, क्या आप घोड़ा बन जाओ मैं आपके ऊपर चढ़ूंगा, माँ कहती ये मैं नहीं करूंगी। घंटों खेल रही हैं, कोई कल्पना कर सकता है कि डिवाइन मदर राज राजेश्वरी ऐसा बन, कोई देखे तो सोचेगा ये भगवान है, भगवान तो एकदम मेडिटेशन में बैठे हुए, आँख खोला तो तेज से नष्ट हो गया, ये भगवान है, बच्चा बन जाते हैं और अगले क्षण वो भी रूप है उनका, कोई आया और कहा मदर आई एम द डार्केस्ट फोर्स, माँ ने फट से उसको जमीन पर लिटाया, उसके सिर के ऊपर अपना पांव रखा और कहा आई एम द हाईएस्ट, वो भी एक रूप है। और दूसरा एक रूप है जब सबके साथ खेल रही हैं, टेनिस खेल रही हैं, शहर सपाटे को जा रही हैं। तो भगवान का अपने प्रियजनों के साथ बन जाना, अपनी सृष्टि के साथ एक हो जाना, इसी को डिवाइन सेल्फ लॉस। लेकिन उसमें क्या होता है, भगवान दूसरे में स्वयं को पा लेता है क्योंकि दूसरे में दिव्यत्व प्रकट हो जाता है। हुज ब्लिसफुल अनडिवाइडेड स्वीटनेस फील्स ए कम्युनैलिटी ऑफ द एब्सोल्यूट। कम्यून, इसको माता जी ने कहा है डिवाइन कम्यून। और एक जगह लिखा है कि संसार में आगे चल के 100 साल बाद 200 साल बाद कह नहीं सकते कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम आएगा, ना डेमोक्रेसी, ना सोशलिज्म, ना कैपिटलिज्म, ना कम्युनिज्म, डिवाइन कम्युनिज्म। ऑरोविल में इसका प्रयास किया माने, कोई घर किसी का नहीं है, कोई धन किसी का नहीं है, सब कुछ हर किसी का है, या हम ये कहें कि भगवान का है। ये कम्युनैलिटी ऑफ द एब्सोल्यूट, उसी का उसके ऊपर एक क्षेत्र अधिकार है। तो यह एक प्रयास है। देयर वॉज नो सॉब ऑफ सफरिंग एनीवेयर, एक्सपीरियंस रैन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय। कोई पीड़ा नहीं थी वहां, हर चीज हर अनुभव में आनंद था। भोजन कर रहा है तो भोजनानंद, उसके बाद सैर कर रहा है तो सैरानंद, उसके बाद नींद में सो रहा है तो निद्रानंद, समाधि में जा रहा है तो भक्ति आनंद, ध्यान कर रहा है तो ध्यानानंद, हर चीज में आनंद था। एक्सपीरियंस रैन फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ऑफ जॉय। ये नहीं कि ध्यान में तो आनंद है उसके बाद निरानंद, लटका हुआ मोह, मन में शांति नहीं, गुस्सा, वो जगत ऐसा नहीं है। वहां कोई मिल रहा है तो आनंद है, अकेला है तो आनंद है, ध्यानमग्न है तो आनंद है, नृत्यमग्न है तो आनंद है, क्योंकि वहां हर अवस्था में आनंद ही है, पीड़ा नहीं है। ब्लिस वॉज द प्योर अनडाइंग ट्रूथ ऑफ थिंग्स, ऑल नेचर वॉज ए कॉन्शियस फ्रंट ऑफ गॉड। वहां अगर किसी से पूछता ये भगवान का घर किस मटेरियल से बना है, आनंद से बना है। यहां लोग क्या खाते पीते हैं जिसके कारण इतने स्वस्थ रहते हैं, आनंद खाते हैं, आनंद पीते हैं, श्वास भी आनंद लेते हैं, जब बोलते हैं तो भी आनंद होता है, सुनने वाले को भी आनंद होता है। यहां कहने की जरूरत नहीं है, बोलने वाले को भी पीड़ा, सुनने वाले को भी पीड़ा। ब्लिस वॉज द अनडाइंग ट्रूथ ऑफ थिंग्स। ये भगवान का घर आनंद से बना है, क्यों? क्योंकि वहां प्रकृति पूरी तरह भगवान को अनावृत करके खड़ी थी, कुछ छिपा नहीं रही थी। यहां छिपाना पड़ता है क्योंकि संसार तैयार नहीं है। आदमी अपने अंदर पूरा प्रेम अनुभव कर रहा है पूरी सृष्टि के लिए, अभिव्यक्त करने जाएगा तो समस्या हो जाएगी। एक आए थे यहां सज्जन, विदेश से आए थे, पढ़ा उन्होंने हर चीज में भगवान है, तो उन्होंने उस पर ध्यान शुरू किया। अब हम लोगों की तरह नहीं है, हम लोग बहुत इनसिंसियरिटी करते हैं। उन्होंने एकदम पक्का हर चीज में भगवान है सोच के उसने शुरू कर दिया। अब सबसे पहली चीज उसने क्या की, समाधि के पास ही किसी को बहुत जोर से एम्ब्रेस किया। अब वो व्यक्ति घबरा गया कि ये क्या हुआ। वो कुछ बोला नहीं, लेकिन लोग थोड़ा उसको देखने लगे। बाहर निकला, दीवार को एम्ब्रेस किया, आगे गया पेड़ को एम्ब्रेस किया, जाते जाते हर चीज को एम्ब्रेस कर रहा था। तो किसी ने उसको कहा आप जाके जरा डॉक्टर आलोक पांडे से मिल लीजिए। और उसको लाने के पहले मेरे को खबर कर दिया। तो मैंने पूछा एम्ब्रेस ही कर रहा है ना, कुछ और तो नहीं कर रहा है? कहते नहीं नहीं नहीं, लेकिन पेड़ को एम्ब्रेस कर रहा है। आई सेड ये तो बड़ी योग की अवस्था है, इसे प्रॉब्लम क्या है? तो वो जब कमरे में आए मैंने सबसे पहले उसको एम्ब्रेस किया, तो बहुत खुश हुआ कि कोई भयभीत नहीं हुआ मेरे एम्ब्रेस से, बैठ गया। तो मैंने कहा सब में भगवान को? हाँ सब में भगवान है, मुझे बहुत प्रेम आ रहा है। तो मैंने कहा देखो तुमको प्रेम आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस संसार का कानून, पौंडीचेरी का कानून, भारतवर्ष का कानून इसको स्वीकार नहीं करता है, तो तुम इधर उधर कहीं एम्ब्रेस कर दोगे तो जेल में चले जाओगे, तो ये मुश्किल होगा। उसको समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों, तो थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे करके एनीवेज वो फाइनली चला गया बेचारा प्री मेच्योर, तैयारी के पहले। तो यहाँ ये आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर आप, यहाँ ये लॉ नहीं काम करती है, वो रित नहीं है यहाँ का विधान, यहाँ वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा, लेकिन भगवान के जगत में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ सत्य आनंद और उस प्रेम से प्रेरित है। ऑल नेचर वॉज ए कॉन्शियस फ्रंट ऑफ गॉड। यहाँ पर कई बार इस अनुभव का मिसयूज किया जाएगा, अंदर कुछ होगा बाहर कुछ और होगा, वाइटल इसको नष्ट करेगा, इमिटेट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, फिर छल आएगा, गिल्ट आएगा, पाप बोध आएगा, शर्म आएगी, लेकिन वहां पर यह संभव ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति की प्रत्येक गति सत्य से प्रेरित थी। ए विजडम वर्कड इन ऑल, सेल्फ मूव्ड, सेल्फ श्योर, ए प्लेनिट्यूड ऑफ इनलिमिटेबल लाइट, एन ऑथेंटिसिटी ऑफ इंट्यूटिव ट्रूथ। वहां पर हर कोई प्रज्ञावान था, अंतर्भाष युक्त था, ज्ञानवान था, सत्यवान था, तो इस कारण वहां यह समस्या नहीं थी। किंतु असत्य अचित अंधकार के जगत में अगर गलती से किसी को यह सत्य मिल गया तो समस्या हो जाएगी। हम लोग देखते हैं कि कैसे हुआ, श्री रामकृष्ण परमहंस को बहुत लोग बोलते थे कि ये तो इनका माथा खराब हो गया है, पूजा करते करते अपने ऊपर फूल डालने लगेंगे, भूल जाते थे भेद भगवान में और खुद में, और भेद है नहीं, इन रियलिटी देयर इज नो डिफरेंस एट द हाईएस्ट लेवल, यही तो अनुभव है। नाचते नाचते अचानक रानी रासमणी को जोर से थप्पड़ मार दिया, बोलती मेरा क्या गलती था, गलती वो खूब पैसा दिया था उसने, पूरा बेलूर मठ बनाया, तो ऐसा नहीं कि कोई साधारण भक्त थी, कहा गलती, यहां मां काली का आनंद है, तू कोर्ट के बारे में सोच रही है, कोर्ट के बारे में सोच रही है, एक जोर का थप्पड़। अब ये वो तो श्री राम के परमहंस थे, साधारणता तो कोई और होता, वो भी भक्त थी, तो कहती नहीं 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 आप, मैं तो बुला रही हूं पुलिस को, आपने गलत किया है। सो वहां पर लेकिन सब सत्य से प्रेरित थे, अंतर्भाष युक्त थे। ए ग्लोरी एंड पैशन ऑफ क्रिएटिव फोर्स, इनफॉलिबल, लीपिंग फ्रॉम इटर्निटी, द मोमेंट्स थॉट इंस्पायर्ड द पासिंग एक्ट। अभी हम लोग कुछ करने के पहले क्या करते हैं, विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो हमारा लाभ होगा, ऐसा करने से हानि होगा, देखो ऐसे बोलना, ऐसे लिखना, और देखना दो चार वकील भी पास में हो तो बहुत अच्छा है। ये सत्य का जगत नहीं है, सत्य का जगत ये मूवमेंट दादा के अंदर दिखाई देता था, माने स्ट्रेट अवे, वो कोई बाहरी ये सब लॉजिक नहीं देखते थे, और इसीलिए लोग नहीं समझ पाते थे उनके एक्शन को, कि जब बाहर से हम देखते हैं तो वो नहीं, हम ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सभ्य जगत है इसमें ये सब लॉजिक से, वो एक चीज़ अंदर से देखते थे, कोई एग्जिबिट करने कुछ आया है कि मैं मानसिक शक्तियों को यहाँ पर दिखाऊंगा, प्लेग्राउंड में माताजी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, दादा बैठे हैं, दादा अचानक वो दिखाने के पहले उसने भूमिका बांधी, आत्मबल अगर आपका प्रबल हो तो आप सब कर सकते हो, अच्छा बात बोला। दादा अचानक उठ के बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, और बोल के चल दिए, वो चल दिए, माँ भी उठ के चल दी। अब आगे क्या है, क्यों चले गए, क्या हुआ, ये तो असभ्य व्यवहार कहा जाएगा इसको। तो माँ ने कहा उन्होंने एक चीज देख ली थी, और माँ तो सब देख के भी वो तो अति विशाल हैं, किंतु वो तो एक काली का एक अंश उनके अंदर विद्यमान था, वो सहन नहीं करता था। माँ तो फिर भी महेश्वरी भी हैं उनके अंदर, महालक्ष्मी भी हैं, वो टोटैलिटी को देखकर मनुष्य के अज्ञान अचित अंधकार को भी समेटकर। तो ये एक्शन मोमेंट्स थॉट इंस्पायर्ड द पासिंग एक्ट, उसके पीछे ये सब नहीं, सोच नहीं, कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेशन जहां आता है वहां पर चोर बुद्धि है, जहां कैलकुलेशन नहीं है वो फ्री स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये मूवमेंट दिव्य होता है। ए वर्ड, ए लाफ्टर स्प्रैंग फ्रॉम साइलेंस ब्रेस्ट, ए रिदम ऑफ ब्यूटी इन द काम ऑफ स्पेस, इन नॉलेज इन द फैदमलेस हार्ट ऑफ टाइम. तो सब कुछ वहां ज्ञान सत्य एक पूर्ण प्रज्ञा से प्रेरित था. ऑल टर्न टू ऑल विदाउट रिजर्व्स रिकॉइल. कितना सुंदर जगत है ये. ऑल टर्न टू ऑल. अभी हम लोग देखते हैं, अच्छा वो आ रहा है, थोड़ा ऐसा करें, दूसरा तरफ से चल लेते हैं. ना मैं उसका मुंह नहीं देख सकता हूं, वो पापी है, वो अज्ञानी है, वो नीच जात का है, वो तो हमारा नहीं है, वो विदेशी है, ये तो दूसरा स्टेट का है, वो अमीर है, ये गरीब है, उसका मेरा मेल क्या. ये अज्ञान का जगत है. सत्य के जगत में ऑल टर्न टू ऑल विदाउट रिजर्व्स रिकॉइल. रिजर्व, रिजर्व होता है किसी से हम फ्रीली नहीं मिक्स करते हैं. क्यों? रिजर्व है हमारे अंदर. और रिजर्व क्या करता है? जुगुप्सा, रिकॉइल. लेकिन जो सत्य को जानता है, कितना सुंदर एक ईश उपनिषद में कहा गया है, ततो ना विजुगुप्सते, किसी चीज से वो रिकॉइल नहीं होता. ये नहीं कि यहां पर नहीं नहीं मैं यहां नहीं जा सकता हूं, सब जगह हर चीज में वो सत्य को देखता है. तो ये उस जगत का हर व्यक्ति को स्वीकार करता था और उसकी ओर मुड़ता था. ए सिंगल एक्सटेसी विदाउट ए ब्रेक, लव वॉज ए क्लोज एंड थ्रिल्ड आइडेंटिटी इन द थ्रॉबिंग हार्ट ऑफ ऑल दैट ल्यूमिनस लाइफ. वहां प्रेम ही प्रेम था, लेकिन कैसा प्रेम? क्लोज एंड थ्रिल्ड आइडेंटिटी. ऐसा प्रेम जो प्रेमी के साथ स्वयं को एक कर देता है, कुछ कहने की, सुनने की, जानने की, समझने की, समझाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसमें एक, दोनों एक हो गए. ऐसा वहां प्रेम था. ए यूनिवर्सल विजन दैट यूनाइट्स, ए सिंपैथी ऑफ नर्व रिप्लाइंग टू नर्व. दूसरे की पीड़ा स्वयं को अनुभव होती थी. एक ऐसा यूनिवर्सल विजन जो हर किसी से एक है. हियरिंग दैट लिसन्स टू थॉट्स इनर साउंड. कितना सुंदर है ये बात. एंड फॉलोज द रिदमिक मीनिंग्स ऑफ द हार्ट. थॉट्स इनर साउंड. हम लोग क्या करते हैं? बाहर का शब्द पकड़ते हैं, और पकड़ते ही नहीं है, याद रखते हैं. 2 साल पहले तुम हमको क्या बोले थे मुझे मालूम है, याद है. लेकिन सत्य का जगत कैसा होता है? किसी ने कुछ कहा, क्रोध में बाहर से क्रोध लगा, अंदर से देखा प्रेम ही तो है. थॉट्स इनर साउंड, रिदमिक मीनिंग इन द हार्ट. प्रेम से वह प्रकट हुआ. बाहर से हम लोग क्या देखते हैं? आउटर साउंड, आउटर वर्ड. लेकिन उस जगत में मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सब की कोई झगड़ा, ये सब जन्म कैसे लेता? हर व्यक्ति हर गति के पीछे अंदर में प्रेम को देख पा रहा था. तो इसलिए उस जगत में थॉट्स इनर साउंड. ए टच दैट नीड्स नॉट हैंड्स टू फील टू क्लैस्प, वेयर देयर द नेटिव मीन्स ऑफ कॉन्शियसनेस. हम जितने क्रूड होते हैं उतना हमको बाहरी अवलंब का आवश्यकता होती है. जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ को जब ऐसे पकड़ करके सोते हैं तभी उनको लगता है माँ है. जब बड़े हो जाते हैं तो उनको पता है मैं कितना भी दूर चला जाऊं, कितना भी भूल जाऊं, लेकिन अगर मैं तकलीफ में हूं और फोन करूंगा, माँ हाँ बेटा क्या चाहिए, माँ तुम आ सकती हो, हाँ बेटा मैं आ रही हूं, सब भूल करके. वो बताएगी भी नहीं कि मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मेरा और भी काम है, सब छोड़ के चली जाएगी. इट टच दैट नीड्स नॉट हैंड्स. लेकिन यहां पर जैसे बच्चा पकड़ के बार बार, तब उसको लगता है हाँ मैं टच कर रहा हूं, सिक्योरिटी तब आता है. लेकिन वो एक अलग सिक्योरिटी है जैसी हम लोग भगवान के साथ अनुभव करते हैं. एंड हाइटेंड द इंटीमेसी ऑफ सोल विद सोल. सोल की तो इंटीमेसी थी ही, लेकिन बाहरी इंटीमेसी उसमें और भी बढ़ जाती थी जब प्रकृति भी इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करती थी. ए ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स, ए डायापसन ऑफ सोल इंटरचेंज, हार्मोनाइज्ड, वननेस डीप, इमेजरेबल. ए ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स. हर सत्ता वहां, हर ऊर्जा, हर व्यक्ति, व्यक्ति तो गलत वर्ड होगा, हर सत्ता, हर बीइंग वहां पर किसी ना किसी शक्ति को अभिव्यक्त कर रहा था. और वे सब शक्तियां हारमोनी में थी. देखिए कितना सुंदर दुर्गा की कहानी है. सब देवता आपस में अलग अलग, वे मिलकर नहीं मार सकते हैं महिषासुर रक्त बीज को, दुर्गा मार सकती हैं। दुर्गा के अंदर क्या है ऐसा, वही शक्तियां हैं जो सब देवताओं में हैं, लेकिन एक सामंजस्य में है, इसलिए वो डिवीजन की एक्सट्रीम फोर्स रक्त बीज, अचित अंधकार की एक्सट्रीम फोर्स महिषासुर उसका विनाश कर सकती है। पावर्स उसका एक ऑर्केस्ट्रा बना हुआ है उनके अंदर, देवताओं में अलग अलग है, एक दूरी है, डिस्टेंस है। इन दीज न्यू वर्ल्ड्स, अब वर्णन है अशुपति जब इन जगतम इस जगत में गया, जगतों में गया, उसका वर्णन बाद में, इन लोकों में उसने प्रवेश किया, तब उसने क्या अनुभव किया। इन दीज न्यू वर्ल्ड्स प्रोजेक्टेड ही बिकेम, पिछले बार ये बात हुई थी कि दूर से इसको देखना जैसा कुछ वेदों के या बाद में कुछ ऋषियों ने देखा, और उस जगत में प्रवेश करना, ये दो अलग बातें हैं। प्रोजेक्टेड, अशुपति उसमें प्रोजेक्ट स्वयं को करते हैं, और वहाँ क्या वो अनुभव करते हैं, ए पोर्शन ऑफ द यूनिवर्सल गेज, वो देखते हैं कि वे भी अब उनके अंदर, वे भी इस विश्व का जो खेल है उसमें वे भी दिव्य की एक शक्ति बन गए हैं, ए सेंटर ऑफ द डिवाइन, ए स्टेशन ऑफ द ऑल इनहैबिटिंग लाइट, ए रिपल ऑन ए सिंगल सी ऑफ पीस। अब वे भी भगवान के दिव्य प्रकाश का एक प्रकाश पुंज बन गए हैं जो जगत की लीला में अपना कार्य करेगा, ऐसा वो अनुभव करते हैं। हिज माइंड एंसर टू काउंटलेस कम्युनिंग माइंड्स, फिर एक एक जो उनके विचार थे अनेकों अनेकों प्रवाहित हो रहे थे, अनेकों अनेकों विचारों को, उस तरह के विचारों को अनेकों अनेकों मन में जगा रहे थे। His words were syllables of the cosmos speech. फिर अशुपति की वाणी में क्या रूपांतरण आता है, वो जो कुछ कहते हैं वो वास्तव में वेद तुल्य होता है। जैसे कबीरदास एक जगह कहते हैं, किसी ने पूछा वेद क्या है आपको मालूम है, तो कहते हैं जो बोलूं सो वेद कहावा, जो मैं बोलता हूं वही वेद है। तो सुनने वाला सोचेगा बहुत ईगो है, पर जो सत्य में रह रहा है उसके लिए वही वेद है, क्योंकि उस समय वो सत्य से प्रेरित है। हिज वर्ड्स वेयर सिलेबल्स ऑफ द कॉस्मोस स्पीच, हिज लाइफ ए फील्ड ऑफ द वास्ट कॉस्मिक स्टर, ही फेल्ट द फुटस्टेप्स ऑफ ए मिलियन विल्स मूविंग इन यूनिसन टू अ सिंगल गोल, फुटस्टेप्स ऑफ ए मिलियन विल्स। ये देखिए एक्सपीरियंस अरविंद को कहां हो रहा था, पांडिचेरी आने के पहले ही सुप्रामेंटल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस, माताजी ने जो कहा कि जो उनको वासुदेवम सर्वमिति जो नारायणा, इट्स ए सुप्रामेंटल एक्सपीरियंस। तभी वो अपनी पत्नी को लिखते हैं, मैं अनुभव करता हूं मेरे अंदर कि ये सारी ये मानव सभ्यता, यह देश के लोग, यह मुझ में उस शक्ति को ढूंढ रहे हैं, वो मेरे द्वार खटखटा रहे हैं, क्या मैं इस समय केवल तुम्हारे बारे में सोचूं। बहुत सुंदर है। और भवानी भारती का जन्म भी उसी में, कि जो माँ पीड़ित हो और सारे उसके भाई बंधु उसका द्वार खटखटा रहे हों, एक असुर माँ का रक्तपान कर रहा हो, उस समय क्या वो विलास विहार करेगा। मिलियन विल्स, अंतिम चार पांच पंक्तियां, ए स्ट्रीम एवर न्यू बॉर्न दैट नेवर डाइज, कॉट इन इट्स थाउजेंड फोल्ड करेंट्स रविशिंग फ्लो, ए स्ट्रीम एवर न्यू बॉर्न। सत्य ज्ञान जब स्पॉन्टेनियस होता है, अंतर्भाष से निकलता है, तब वो सत्य होता है, और जब वो पढ़ा लिखा, वही एक चीज जो कभी पढ़ी एक स्कॉलरली ढंग से और प्रेजेंट की गई, वो सत्य और ज्ञान नहीं होता। माँ कहती इट इज ड्राई एंड डेड, ए स्ट्रीम एवर न्यू, वही सत्य अलग अलग ढंग से प्रकट हो रहा था अनेकों रूप में। विद एडीज ऑफ इमॉर्टल स्वीटनेस थ्रिल्ड, और उस सत्य के अंदर माधुर्य भी था। ही बोर कॉइलिंग थ्रू हिज मेंबर्स एज दे पास्ट काम मूवमेंट्स ऑफ एन ऑफ इंटरमिनेबल डिलाइट, और प्रत्येक गति वहां आनंद से भरी हुई थी, और इस आनंद को अशुपति अपने अंदर अपने रग रग में अपनी कोशिका कोशिका में अनुभव कर रहे थे। और कौन सा आनंद था वो, द ब्लिस ऑफ ए मिरियड myriads who are one, एक आनंद है जो हम एक में ढूंढते हैं, हाँ माँ के अंदर वो एक आनंद। एक आनंद है जब हम हर किसी को के अंदर माँ की लीला को पाकर पाते हैं, यही सुप्रामेंटल आनंद है। वह एक आनंद है जिसमें भक्त मुड़ जाता है भगवान की ओर, बाकी सबको, संसार को, जगत को बंद कर देता है, छोड़ देता है, वो एक रस का आनंद है। लेकिन एक दूसरा आनंद है जहां वो संसार में अनेकों अनेकों रूप से अलग अलग ढंग से खेलता है, लेकिन हर किसी में भगवान के किसी विग्रह या भगवान की किसी लीला की रचना देखता है और उस लीला का वो भाग बनता है। वह है ब्लिस ऑफ ए मिरियड मिरियड्स, अनेकों अनेक हु आर वन। और वह अनेकत्व का आनंद एकत्व के आधार पर अश्वपति अनुभव करते हैं भगवान के घर में, और यही आनंद हम सब लोग अनुभव करें तो बस सब आनंद में बन जाए, सृष्टि आनंद में बन जाए।